Ok, ti vedo sicuramente non ci sono altre persone che vogliono scendere in marcia, quindi mi hanno visto, stavo vedendo molto le sue propaganda e andate soldate. E adesso questa gente è presentata, si è scritta da Sivasa di Gore, Batunda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. So, पिछली बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बंद हो गया। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हाँ, तो पिछली बार हमने 9वें अध्याय को शुरू करने की बात की थी। 9वां अध्याय हमारी जो वैष्णव परंपरा है उसके आचार्य इसके विषय में ऐसा टीका कर रहे हैं कि 9वां अध्याय जो है वो पूरी भगवद गीता का केंद्र बिंदु है। भगवद गीता को सारे वेदों का सार माना जाता है। अगर वेद गाय के रूप में हो, गाय माता के रूप में, तो भगवद गीता उस गाय का दूध है, वेदों का दूध, और अर्जुन उसको पीने वाला बछड़ा है। और ग्वाला कौन है? तो हमेशा जो होता है वही होता है, ग्वाला तो कृष्ण। So, इसका अर्थ ये होता है कि वेद का जो अंतिम ज्ञान है वो है भगवद गीता। भगवद गीता का तीन विभाग में, पहले विभाग में 1 से 6 अध्याय, जो कि हमने 8वें अध्याय के अंत में चर्चा किया था कि 1 से 6 अध्याय जो है वो अलग अलग प्रकार के योग पद्धति का वर्णन करता है। जब हम किसी चीज के महत्व को बताना चाहते हो तो उस महत्व को बताने के लिए पहले हमें बाकी सारी चीजों का वर्णन करना पड़ता है, तब जाके उस योग का महत्व बन सकता है, भक्ति योग का। जिसने कभी दुख देखा है वहां पर कुछ बंद है। हाँ, ओके, समझ गया। जिसने कभी दुख देखा है उसको सुख का महत्व ज्यादा होता है। जिसने अंधकार को देखा है वो प्रकाश को अच्छे से समझ सकता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भगवत भक्ति जो है, भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ होने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है उसका वर्णन भी करना पड़ता है, तब जाके पता पड़ता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए 7 से 9, 7 से 12 जो मध्य का जो पोर्शन है वो भक्ति योग का महिमा चर्चा करता है, और वो मध्य में है। जनरली कोई राजा महाराजा जर्नी करते हैं तो आगे एस्कॉर्ट होता है, पीछे भी एस्कॉर्ट होता है, और बीच में वो होते हैं। इस तरह से भक्ति योग है वो सारे राजा हो गए, सारे योगों में, सब प्रकार के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के जितने उपाय हैं उस सब में राजा माना जाता है। इसलिए तो उनको बीच में रखा है, और उसमें भी 9वां अध्याय है वो 6 अध्याय का मध्य है, और उसमें भी अंतिम श्लोक जो है वो पूरी भगवद गीता का मध्य होता है। और वो श्लोक में जो प्रथम शब्द है वो उस श्लोक का सार प्रस्तुत करता है, अर्थात मनमना शब्द चार वेद इतिहास पुराण ये सबका सार है। मनमना शब्द मुझ में मन लगा और इसका प्रमाण हम कहाँ से प्राप्त करते हैं कि सर्व वेद इतिहास में जितना भी विधि निषेध दिए गए हैं उसका सार क्या क्या कहा गया है। स्मर्तव्यम स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। हमेशा भगवान का स्मरण करना ये विधि है और कभी विष्णु का या भगवान का विस्मरण नहीं करना ये निषेध है। और बाकी सारा वेद साहित्य शास्त्र सब इसके ही सबॉर्डिनेट है, इसके अनुसार चलते हैं। सो सारे चतुर लोगों में जो भगवान का भक्ति योग के माध्यम से भक्ति करता है वो सबसे चतुर है। क्या कहा है, जेई भजे से चतुर, कृष्ण का भजन करता है वही चतुर। एक्चुअली ये श्लोक तो हम कई जगह बताते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप चाहे जो विधि का पालन करना है करें, इवन भक्ति योग में आने के बाद भी चतुर व्यक्ति तो वही माना जाता है कि जो अपने भक्ति को गंभीरता से लेता है वही चतुर माना जाता है। ये भजे सही चतुर, वो चतुर है जो अपनी भक्ति को सुरक्षित रखता है और अपनी प्रगति में कोई रुकावट नहीं डालता और सारे अपराधों से बचते हुए केवल अपनी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, वो चतुर है। रम्या काचिद उपासनाम ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। अलग अलग भगवान की जितनी भी उपासनाएं होती है या फिर जितने भी मार्ग, उस सब में रम्या काजिद उपासना, वृंदावन की जो गोपियों ने जिस तरह से भगवान का सेवा या भक्ति किया है वो सर्वश्रेष्ठ, इस शास्त्र का प्रमाण है। तो भक्ति योग का हरेक शास्त्र में सब जगह वर्णन है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, विशेष करके भगवान का चिंतन करना सर्वश्रेष्ठ है। हमने भगवद गीता को जंगली कई मंदिरों में मॉड्यूल 3 जो हम यहाँ पर मॉड्यूल 3 जिसको चलाते हैं ये VIHK के सिस्टम के अनुसार, उसमें बाकी की जो 3 किताब हैं ईशोपनिषद उपदेशानुत और भक्ति रसानुत कई जगह पर इसको पहले सिखाया जाता है और फिर भगवद्गीता सिखाया जाता है। लेकिन मैं पहले से भगवद्गीता को पहले सिखाता हूँ और फिर भक्ति रसामृत बाद में सिखाता हूँ, क्योंकि भगवद्गीता में भक्तियों की महिमा को प्रस्थापित करने के बाद फिर आप भक्ति के रहस्य को और विज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण अधिक गहराई से समझेंगे तो इसमें आपको अधिक रुचिकर लगेगा। वो फिर भी स्वतंत्र है, सब भक्त जिसको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। सो शुद्ध भक्ति का अर्थ ही होता है अनुकूल, भगवान को जो कार्य प्रसन्न करते हैं उसको भक्ति कहते हैं, जो कार्य से भगवान प्रसन्न हो। और जिस कार्य का एक ही हेतु है भगवान को प्रसन्न करना, एक ही हेतु है जिस कार्य का, उस कार्य को शुद्ध भक्ति कहते हैं, जिसका और कोई हेतु नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् जनार्दनम्। ज्ञान और कर्म से जो शुद्ध हो चुका है इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि मैंने ये चीज पहले भी बताया भक्तों को कि एक होता है शुद्ध भक्ति और दूसरा होता है मिश्र भक्ति। भक्ति का अलग अलग स्टेजेस है, लेकिन श्री प्रभुपाद ने कुछ जगहों पर यह भी कहा है कि ज्यादातर जो भक्त होंगे जब जब प्रचार फैलता जाएगा तो ये नहीं समझना कि केवल 700 ही केंद्र इस्कॉन में है तो 700 से ज्यादा 7000 हो जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। 10,000 आने वाले सालों में समग्र विश्व में केवल हरे कृष्ण ही सुनाई देगा और कुछ सुनाई नहीं देगा। आप कहेगा प्रभु वो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप उसका नींव रखने वाले भक्त लोग हो, आपको भी केवल आपके लाइफ टाइम में उसके लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो कर लो, अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपको फिर से भेज देंगे, लेकिन आप यहाँ रहने का इच्छा मत करो। मैं प्रभु जी आने वाले 10,000 साल में जब तक इसको हम रहेगा तब तक मैं रहूंगा ऐसा मत सोचिए। तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के भक्तों का वर्णन होता है उसमें जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत गिने चुने, हैंडफुल पुलिस बहुत गिने चुने, और कम्युनिटी भक्त बहुत होते हैं। कम्युनिटी भक्त जनरली क्या करते हैं, सोलह माला कर सकते हैं, चारणियों का पालन कर सकते हैं, अपने वर्णाश्रम के जो नियम है उसका जो भी आश्रम है उसको फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सेवा कर सकते हैं और इसी तरह से उनका जीवन चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भक्त 100 में से 1,000 में से 1 ऐसे जो बैठ नहीं सकता, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, वो उसको हजम ही नहीं होता ये बात, तो बहुत शुद्ध भक्त बनने का बहुत प्रयास करता है। आगे बढ़ शुद्ध भक्त का अर्थ होता है कि उसका हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, वो बहुत प्रयास करता है और फिर जब प्रयास करता है तो फिर भगवान को हेल्प करना ही पड़ता है। तो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं कृष्ण भक्ति में और उन लोग को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति का। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम सभी शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्त। कई बार आप भक्तों का शायद चिंतन करते होंगे आप लोग कि इतने साल हो गए मुझे कृष्ण भक्ति में आने के बाद अभी मेरा हृदय स्वच्छ नहीं हुआ, इतना समय से मैं भगवान की माला का जाप कर रहा हूँ, नाम का महिमा सुना है, गीता भागवत पढ़ते हूँ, अभी भी मेरा हृदय स्वच्छ नहीं हुआ। ये भाव किसी के भक्तों के हृदय में आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो भक्त गंभीर है अपने प्रगति पर, वो सोचते हैं कि हाँ मुझे प्रयास करना चाहिए कि अभी तक क्यों मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ। फिर वो बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। शुद्ध भक्ति का चर्चा 9वें अध्याय में बताया गया है। 9वां अध्याय जो है उसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का नाम दिया प्रभुपाद ने, सबसे अधिक जो गहन या गुह्यतर जो ज्ञान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दूसरे तीसरे अध्यायों में जो ज्ञान की चर्चा की है वो ज्ञान मुक्ति दे सकता है जनरली, और वो घुरे ज्ञान
फिर जिस ज्ञान से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान सातवें और आठवें अध्याय में बताया गया है, वो गुह्यतर हो गया। और जो भक्ति का विज्ञान दर्शाता है, जो भक्ति का ज्ञान बताता है, वो नौवें अध्याय में है, इसलिए इसको गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्य तो पहले से ही है, आप जो भगवद गीता का ज्ञान, वो गुह्य ज्ञान, सीक्रेट सबको नहीं दिया जाता, उससे भी ज्यादा सीक्रेट है गुह्यतर। और उसमें जो गुह्यतम, जो अंतिम साइंस ऑफ जो अंतिम ज्ञान, गुह्यतम, गुह्यतम और ये इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान 18वें अध्याय में फिर से बताते हैं कि सारे गुह्यतम जो है उसमें भी जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि 9वां अध्याय पूरा गुह्यतम बताया गया है, तो पूरे 9वें अध्याय में जो बताया उसका भी जो गुह्यतम है, सर्व गुह्यतम भूय, सारे गुह्यतम जो है उसमें भी जो भूय है, आई मीन दैट इज द लास्ट यू नो ज्यूवेल, लास्ट you know the supremely confidential knowledge, that is Krishna says that I am repeating it again, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो वो ज्ञान 9वें अध्याय में है ऑलरेडी, लेकिन वो चीज भगवान 18वें अध्याय में फिर से सुनाते हैं। जब कभी दो चीज एक ही बात को दो बार या तीन बार बताया जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो बात महत्वपूर्ण है। तो अभी अंत 8वें अध्याय में अनन्य चेता की बात हुई थी, जिसमें भगवान के भक्त भगवान पर संपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अंधकार और प्रकाश के मार्गों को पार कर चुके कर लेते हैं, 8वें अध्याय में सब बताया गया था। और अभी किस तरह से वो अनन्य भक्त बन सकते हैं, भक्त हम ऐसा अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं, इस चीज का वर्णन फिर भगवान अभी 9वें अध्याय में करते हैं। सो हमारा प्रयास रहेगा कि आज और आने वाले वीक में दो बार हम सेशंस लेकर के 9वें अध्याय को फिनिश करेंगे, ताकि 15-14 तारीख को जब मैं जाऊंगा 2 महीने के लिए, उस समय आप भक्त लोग 1 से 9 का स्टडी करेंगे, और जुलाई में आपका मॉड्यूल फाइनल एग्जाम लेंगे। सो पहला श्लोक पढ़िए।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति लाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे।
13वां श्लोक पढ़ लो।
सेकंड श्लोक। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञज्ञात्वा मोक्षस्य अर्थः। तो तीन चीज बताई है श्लोक में। कौन सा चीज है कि इमं घुयतमं सॉरी इदं वाजट इदं इदं तुते घुयतमं प्रवक्ष्यामि इदं तुते घुयतमं प्रवक्ष्यामि। मैं तुम्हें ये ज्ञान बताता हूँ क्यों, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। घुयतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयते, ईर्ष्या नहीं करते और ज्ञानम विज्ञान सहितम, इसका सुनने से तुम्हारी प्रगति होगी और यज्ञात्वा इसको जानने से मोक्ष से मुक्ति प्राप्त करोगे। तो तीन चीज हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, एक तो हम कृष्ण भावना कृष्ण के विषय में श्रवण करके हम प्रगति करते हैं, फिर इस ज्ञान को समझने के लिए ईर्ष्या रहित होना चाहिए और अगर हम इसको भक्ति भाव से ज्ञान विज्ञान के साथ इसको सुनते हैं तो हमारे सारे कष्टों का निवारण अशुभात मोक्ष से अशुभात हमारे सारे कष्टों का अंत हो जाता है। तो ये श्लोक में ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि अनसूय वे ईर्ष्या से मुक्त होना ये बहुत ही आवश्यक है। कई भक्त लोग कहते हैं बार बार, आज सुबह मुझे दोपहर को भक्त मुझे मिलने आया था, वो मुझे बता रहे थे कि कोई कहीं पर ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि कुछ पर्टिकुलर एपिसोड चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हो। 9th कैंटो में तो क्या ये सच है? तो मैंने वो कहा आपको क्या लगता है? तो बोले कि हाँ बात तो है लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि श्रीमद् भागवतम में कई जगह पर इस प्रकार का वर्णन दिया गया है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अचानक आप निम्न से जागोगे सुबह आपको पता पड़ेगा हाय मैं तो ईर्ष्या से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होगा इसमें, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता इसमें। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपना प्रयास भी करते हो ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए, फिर भगवान आपको सहायता करते हैं। हमें अपना प्रयास करना पड़ता है, जनरली हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, मैं और कृष्ण से सब इम्पॉसिबल, तो सोलह माला जप करता हूँ बस इतना ही हमारा वैल्यू, हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे कैसे हो सकता है? नहीं, हम करते हैं, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं इसलिए इधर गिरे। अगर वही भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं ना, तो कृष्ण सभी जीवात्माओं के मूल हैं, सबके पिता हैं, इसलिए भगवान के प्रति जो ईर्ष्या की जाती है वही ईर्ष्या एक्सपांसर होकर के उनके भक्तों पर जाती है। अर्थात जब तक हम भगवान के भक्तों की ईर्ष्या कर रहे हैं तब तक हम भगवान के ईर्ष्या भी कर रहे हैं, और भक्तों हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान की ईर्ष्या नहीं करते लेकिन भक्तों की ईर्ष्या करते। ईर्ष्या शब्द बहुत ईर्ष्या बहुत बहुत ही नाशक है, नाशक। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया था, एक बार एक व्यक्ति एक दूसरे मित्र से ईर्ष्या कर रहा था, तो उसको पता पड़ा कि उसका उसको हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है, हाई कोर्ट का जज बन गया, तो उसको बताया कि तुम्हारा मित्र हाई कोर्ट का जज बन गया है। पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है, नहीं बन सकता। ताने को बन गया तो उसको सैलरी नहीं मिलता होगा, उसको पैसा नहीं देते होंगे, ऐसे ही बना दिया होगा। दिस एग्जांपल वाज गिवन बाय प्रभुपाद। यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ईर्ष्या जिससे करते हैं ना, उस व्यक्ति का कोई अच्छा बोल देगा ना तो आपका खून गर्म हो जाता है। और हम किसी का ईर्ष्या कर रहे हैं और कोई आपको उसके विषय में आपको अच्छा अच्छा चीज बताता है, यू नो, आप परेशान हो जाते हैं और आप प्रयास करते कि बात बदल दो, यू नो, क्योंकि हम सुन नहीं सकते। वो व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं, तो मुझसे तो पर हो ही नहीं सकता। आई एम द बेस्ट, मानो न मानो। ज्यादातर भक्त लोग कई बार जो शुद्ध नहीं होते तो शुरू शुरू में ऐसा मानते रहते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम परफेक्ट, अच्छे से सेवा करता हूँ, विनम्र हूँ देखो, और सेवा भी अच्छी करता हूँ, और गुरु जी भी मुझसे प्रसन्न है, भक्त भी मुझसे प्रसन्न है, सब आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब आई एम द बेस्ट मीन्स द अदर सारे इंफीरियर, बाकी जो भक्त है उनकी भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब होता है ईर्ष्या के कारण, और इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही आवश्यक है कि जब किसी भक्त के आध्यात्मिक प्रगति का समाचार आपको प्राप्त होता है तो उससे आपको प्रसन्न होना चाहिए, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि भक्त का शत्रु होता ही नहीं कोई। भगवान का जो भक्त होता है वो तो अजात शत्रु होता है। अभी चलो ठीक है, अजात शत्रु हम नहीं है तो हमारे शत्रु हमने बना के रखे है, अगर शत्रु है तो उनकी प्रशंसा से भी हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये भक्त का आध्यात्मिक प्रगति हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भक्त मेरे पास आए थे, 2 घंटा लगातार मैं उनको सुनता रहा, कान पक जाए, ये है वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। उसका सबॉर्डिनेट था उनका, वो लीडर थे और उनके सबॉर्डिनेट थे, तो बहुत बड़े लीडर है वोटी वोटी। तो फिर मैंने उनको कहा कि प्रभु वो जो भक्त जिसके बारे में आप बता रहे थे वो अज्ञानी है, आप ऐसा मानते हो? तो बोला हाँ, 1 नंबर का रास्कल है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर उस भक्त उस व्यक्ति का अगर उद्धार करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, नहीं हो सकता, आप सोच के बताओ कि उद्धार हो सकता है कि नहीं, क्या वो प्रभुपद की कृपा प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो कहा हाँ हाँ, कर तो सकता है, क्या उद्धार हो सकता है? हाँ हो सकता है, कैसे होगा? तो वो अच्छी भक्ति करेगा, अच्छी साधना करेगा तो उसका उद्धार होगा। मैंने कहा कि क्या आप तो इतने विद्वान भक्त, आप तो जानते हो कि आगे बढ़ने का उपाय क्या, आध्यात्मिक भक्ति केवल भक्ति करने से ही आगे बढ़ सकते हैं, और कोई उपाय है क्या? फिर अंत में खुद ने कहा कि हाँ, अगर किसी भक्त की कृपा होगी तो आगे बढ़ सकता है। फिर मैंने उनको कहा तो क्या आप उस पर कृपा नहीं कर सकते? तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए वो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है इस विषय में, मैं तो लंबा बात हुआ था उसमें, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि अगर किसी भक्त में कोई कमी है तो या आपके सबॉर्डिनेट है, आपके सुपीरियर है, या आपके इक्वल है, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से, बहुत ही आवश्यक है। क्यों? अगर ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, 9 चैप्टर में एंट्री नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं कि यू कैन नॉट एंटर। मैं तुम्हें गुहेतम बात बताता हूँ, क्यों बताता हूँ? क्योंकि तुम मेरी ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या करने वाले लोगों को तुम्हें दिखाता ही नहीं मेरा ज्ञान, बताता ही नहीं मेरी ईर्ष्या करने वाले लोगों को। फिर भी भगवान के भक्त क्या करते हैं कि ये लेके चले जाते हैं डोर टू डोर। लेट मी ट्राई, प्रयास तो करूं, क्या पता कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु ना हो और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो। जनरली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो लोग सोचते कि सेफर साइड नॉट टू गो, बट डिवोटीज दे टेक रिस्क, बट लोग रिस्क लेते क्या, वो चले जाते हैं सबके पास और जैसे उसको स्मेल आ जाता है कि ईर्ष्यालु है, अपराध कर सकता है, वहां से चला जाता है। तो इससे अधिक लोगों का उद्धार हो सकता है, ये भगवान का, क्योंकि भगवान का भक्त भौतिकवादी लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता। भक्तों की तो बात छोड़ो, जनरली ऐसा होता है, कुछ लोग मुझे कहते हैं पर भी भौतिकवादी से और ईर्ष्या नहीं करते, हम तो भक्त से ही ईर्ष्या करते हैं, लेकिन भौतिकवादी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कहेगा मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ा हूँ तो मैं पार्टीज वार्टीज में जा नहीं सकता, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जा सकते हैं, एंजॉय करते हैं और उनको कोई सारी फ्रीडम है, तो इससे ये भौतिक रूप से ईर्ष्या है। आप लिमेंट कर रहे हो, आप शोक कर रहे हो भक्ति में आने के बाद कि हाय हाय मैं कहाँ फंस गया भक्ति के मार्ग में, मैं बहुत नहीं कर सकता। तो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से जब कोई बचता है तब भगवान स्वयं उसको अपनी बात बताते हैं। अब भगवान से अधिक ग्लोरी और कौन सुना सकता है अपने भी? भगवान के विषय में कोई सुना इससे अच्छा भगवान खुद ही अपने विषय में बताते, इससे अधिक और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, स्वयं ही बताते अपने विषय में अपना महिमा। सो ईर्ष्या शब्द से और एक बात जुड़ी हुई है, इसका तात्पर्य होता है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हैं, हमें आनंद भोग करना है, लेकिन उसमें भगवान कहीं पर दिखने नहीं चाहिए, भगवान कहीं पर नहीं होने चाहिए, इसलिए हम ये माया से आकर्षित होते हैं। तो जब तक ये एंजॉयमेंट स्पिरिट रहेगी हमारी भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की, तब तक हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं भगवान की। इसलिए भगवान एकमात्र भोक्ता है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। भोग करने का काम, आनंद उठाने का काम एक ही व्यक्ति का है, कौन है वो? कृष्ण। कामिनी रखान नहे तव धाम पहाड़ मालिक केवल यादव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। कामिनी काम जो इंद्रिय भोग करने का जो साधन है या उपाय है, कामिनी काम स्त्रियों का सुख, कामिनी काम नहे तव धाम, वो आपके लिए नहीं है, नहे तव धाम, क्यों? तहार मालिक केवल यादव, उन सबका स्वामी कौन है? कृष्ण है, केवल यादव। तो इसलिए प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने का उपाय हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं प्रकृति को और इसलिए दुखी होते हैं, लेकिन भगवान का भक्त होता है वो भोक्ता नहीं मानता अपने आप को, वो भगवान को भोक्ता मानता है और भगवान की ही सेवा के लिए सब कार्य करता है उनको प्रसन्न करने के लिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, भक्त जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं ये भगवान के जो भक्त हैं वो बेचारा हमेशा दुखी रहता है, क्यों? टीवी बंद पड़ा रहता है उसका, ना कभी रेस्टोरेंट में खाने जा सकता है, मूवीज तक नहीं देखता, ये तो छोड़ो चाय कॉफी भी नहीं, पार्टीज भी नहीं, क्या जीना है उसका, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान के भक्तों को सुख प्राप्ति नहीं होती, वो तो बस एक ही चीज में लगे हुए, भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान को कैसे प्रसन्न करे, उनको अपने सुख का पड़ा कोई ख्याल नहीं। लेकिन यहाँ पर वो लोग गलती कर लेते हैं, जनरली भगवान के भक्त भगवान से अधिक सुख अनुभव करते हैं, ये नियम है। हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप विसल बजाते हो तो उसमें आप एयर का उपयोग करते हो, है ना, और उससे आप कुछ हद तक बजा सकते हो ना, अलग अलग गाने गा सकते हो या अलग अलग विषय से आप कुछ हद तक कर सकते हो म्यूजिक। लेकिन वही एयर का उपयोग अगर आप करते हो बांसुरी बजाने के लिए, फ्लूट बजाने के लिए, तो उससे अधिक मधुर संगीत और कहीं हो सकता है? कहा जाता है कि बांसुरी का जो आवाज होती है, बांसुरी का फ्लूट का जो आवाज है, वो पूर्ण रूप से सत्वगुण ही माना जाता है। वो आपके मन को शांत कर देता है तुरंत, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट इंस्टेंट काम करता है वो, तुरंत मन को शांत कर देता है बांसुरी का आवाज। तो उसमें कितना अलग अलग सॉन्ग, कितने अलग अलग प्रकार के म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है। तो भगवान खुद अगर भोग करते हैं तो इसमें इतना आनंद नहीं होता, लेकिन जब भगवान के भक्त भगवान को सेवा करते हैं तो भक्तों को ज्यादा आनंद मिलता है, भगवान से भी अधिक आनंद। तो वही आनंद की प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर आए कि वो ऐसा क्या है मेरे भक्तों में कि मुझे प्रसन्न करने में उनको मुझसे अधिक आनंद मिलता है। तो मैं तो लोअर साइड आ गया, वो हायर साइड चले गए, हालांकि मैं भगवान हूं। So, भगवान के भक्त बहुत ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि राज विद्या, ये श्लोक जो है, ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूं आपको, वो राज विद्या है, विद्याओं का राजा, सभी विद्याओं का राजा, किंग of knowledge। दो प्रकार की विद्या होती है, आध्यात्मिक विद्या और जड़ विद्या। जड़ विद्या का तो कोई स्थान ही नहीं है, जड़ विद्या जो होती है वो जड़ ही, उसमें जान नहीं है उसमें। लेकिन जितनी भी आध्यात्मिक विद्याएं हैं, या ज्ञान है, राज विद्या, उसका राजा है ये भक्ति। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान और संसार में कहीं है ही नहीं। और भगवद गीता में ये नौवां अध्याय में तो ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, ज्ञान का अर्थ थियोरिटिकल नॉलेज और विज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपके लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट होता हो। हाँ प्रभु, मैं तो भगवद गीता पढ़ लिया, श्रीमद भागवतम पढ़ लिया, चेतन चेतन भी पढ़ लिया, तो इससे अब तो शुद्ध पट बन गया ना? नहीं, अभी तो नहीं बने। एक भक्त अभी कुछ समय पहले मुझे मिले थे, एक ही बात बताते रहे थे बार बार, वही नरसिंह देव ने कश्यप को तपस्या किया था और फिर बाद में प्रहलाद को परेशान किया, और प्रहलाद ने वो पिलर तोड़ा हिरण्यकश्यप को, वहां से नरसिंह देव प्रकट हुआ, और कोई कथा नहीं है क्या? वही एक ही बार बस होता है। तो मैंने उनको कहा कि जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते हैं, डिवोशनल एस्पेक्ट उसमें नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन है बस। तो इन्फॉर्मेशन का मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आप एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने पर आपको फिर से अगर वो बात बताई जाती है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। हम कोई नई बात तो बताते ही लेक्चर में, एक ही बात बताई जा रही है बार बार, आपको अच्छा नहीं लगता। ये ज्यादातर भक्तों का ही समस्या होता है कि वो वहीं अटक जाते हैं। लेकिन डिवोशनल एस्पेक्ट जब होता है तो क्या होता है कि वो वही बात को वो सुनने से थकते ही नहीं है, एक ही बात को बार बार सुनने बार बार ऊपर चलते। तो इसलिए भगवान का जो ये विद्या है, नॉलेज है, राज विद्या, तो सारे ज्ञान का राजा माना जाता है। और ये विज्ञान भी है, विज्ञान का अर्थ होता है कि आप इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ अपने जीवन में। बस प्रहलाद महाराज की बात अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि आप सुनी हुई बात फिर से सुन रहे हो, लेकिन प्रहलाद महाराज के एक उपदेश का जीवन में पालन करके दिखाओ। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रहलाद महाराज और एवं सप्तम स्कंद नरसिंहदेव का जो कथा है उसमें भक्ति की महिमा बताई गई है बार बार। तो इसलिए ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, प्रभुपद बताए इस छोटी लेटर में, तब शुद्ध भक्त माने जाएंगे। तो फिर राज विद्या राज गुह्यम फिर से बताया, पहले आगे बताया था एक बार गुह्यतमम, यहाँ पर फिर से बताया सारे गुह्य में गुह्य ज्ञानों का राजा है। Is that coming to you?
No,
no, but then it is better to take it out, no? फेंक दो उसको उठा करके। ठीक है। सो राजगुह्यम, राजगुह्य शब्द का अर्थ होता है कि यह ज्ञान सारे राजाओं का ये राज शब्द बार बार क्यों यूज हुआ है? राज विद्या राज गुह्यम दो बार यूज हुआ है। इसमें बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो राजा होते हैं ना वो ज्यादातर बात गोपनीय रखते हैं और उसके पास जो खजाना होता है तो किसी को नहीं पता। राजा के खजाने के बारे में किसी को नहीं पता। आज भी कहीं ऐसे राजा है कि जो मर गए और भी खजाना किसी को पता ही नहीं कहा गया, उसको कई बार जमीन में से निकलता है इतना सारा खजाना। ऐसे सब राजाओं का जो खजाना होता है वो किसी को नहीं पता होता है कहाँ पर है उसका खजाना। चाहे अगर कुछ चीज उसकी किसी के हाथ में आ भी गई लेकिन उसका जो सबसे सीक्रेट होता है वो किसी को नहीं पता होता है, उसकी रानी तक को भी नहीं पता होता है। तो वो चीज है, वो है भक्ति योग सबसे उत्तम। सबको नहीं बताते इस पद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पता नहीं लोग इसको ये इसलिए अभी आपके सामने इतना आसानी से हम चर्चा करते हैं क्योंकि अनर्पित चरिन चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत ज्वल रसान। यू नो हमें सुनने में भक्ति योग के विषय में हमें ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे को राजगुह्य राजगुह्य क्यों बोलते हैं बार बार, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? हरे कृष्ण मंत्र तो स्ट्रीट पे जाके गाते हैं, इसमें सीक्रेट क्या है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पहले ये राजगुह्य ज्ञान किसी को पता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि भक्ति योग जैसा महिमा भक्ति योग के विषय में बहुत कम जगह पर मिस इसको आच्छादित करके रखा था माया देवी ने, लोग इसको समझ नहीं सकते थे। उस समय भक्ति भगवान को प्राप्त करना होता तो ध्यान करो योग करो ये सब करना पड़ता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? अनर्पित चरिन चिरात, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया करुणा अवतरण करो, वो करुणा करके कृपा करके अवतरण करो समर्पयि तुम देता हूं क्या उन्नत उज्ज्वल रस। अच्छा उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? वो स्वभक्ति श्रियम अपनी भक्ति। अभी हमें ये प्राप्त हो गया इसलिए इसका वैल्यू इतना नहीं लगा रहे। अच्छा राजगुरु वहाँ नहीं पता, मेरे तो ये कॉमन होगा सबके लिए, 700 मंदिर है इसकॉन के, कॉमन ही हो गया ना, कौन होगा सबके लिए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गुहे ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको मिल रहा है। राजविद्या राजघूयम पवित्रम, ये पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि हमारे जितने भी कर्म इस जन्म के पूर्व जन्म के जितने भी कर्म है वो सारे कर्मों का जो इफेक्ट है वो साफ कर देते हैं। हमारे भक्ति सिंधु में हमें क्या प्राप्त होता है, कर्म के विषय में क्या बताया सिखाया गया है? एक तो होता है प्रारब्ध कर्म, दूसरा होता है फलोन्मुख कर्म, अभी कुछ फ्रुक्टिफाई होने वाले हैं फलोन्मुख, फिर जो होता है डोरमेंट जो कि कूटम डोरमेंट है वो अभी बाहर नहीं आया, और कुछ बीज के रूप में होता है उसको बीजम। तो ये सब प्रकार के जो कर्म है प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और बीज, ये चारों प्रकार के जो कर्म है वो कर्मों से भक्ति योग में हो आपको साफ कर देता है। कर्माणी निर्दहति किंतु जो भक्ति बहा जाओ, भक्ति योग से आप सारे कर्मों का परिणाम को साफ कर सकते हैं, और किसी भी योग में ऐसा नहीं है। जो किया है आपने ये भक्ति योग में क्या होता है कि आपने एक बैंक से आपने 25 लाख का लोन लिया, दूसरी बैंक से आपने 30 लाख का लोन लिया, तीसरे बैंक से आपने 1 करोड़ का लोन लिया, तो जितनी लोन है भक्ति योग का स्वीकार करने से वो सारी लोन माफ हो जाती है, नहीं भरना पड़ता। लेकिन ये और किसी योग में संभव, ना कर्म योग में, ना ज्ञान योग में, ना ध्यान योग में, किसी में संभव। कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति में संपूर्ण अज्ञानता को नष्ट कर देती है भक्ति। क्लेशाग्नि सारे क्लेशों को नष्ट करती है ये भक्ति, भगवान की भक्ति। पवित्रम इदम उत्तमम, ये उत्तम आपको ऊर्ध्व गति देता है। उत्तम आपकी उत्तम को प्रकट कर रहा है क्या है, व्हाट इज दैट, ट्रांसेंडेंटल है ना, क्या है, प्रत्यक्षावगमन, डायरेक्ट उसका परिणाम देखते हैं। प्रत्यक्ष क्या होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है वैसा होता है और हमें इसका अनुभव नहीं। अच्छा इसका अनुभव कब हो सकता है, मर जाओ अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, तभी मैं जो कुछ करूंगा इसका कोई वैल्यू नहीं है ना? नहीं, प्रत्यक्ष आवागमन धर्म। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अच्छा हेल्दी फूड खाते हो, यू नो आपको भूख लगी है, आपको भोजन चाहिए, आप भोजन करते हो, तो इसमें आपको नरिशमेंट होती है ऑटोमेटिक, उसमें कोई आपको शक्ति अपने आप आती है कुछ, वो अनुभव होने वाली बात है, कोई थियरी नहीं है ऐसा, है ना, केवल थियरी तो नहीं है कि ये भोजन खाने से तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हें शक्ति आएगी। अच्छा तो थियरी से क्या होता है, भक्ति प्रत्यक्ष आगमन, है ना। कई बार हम कहते हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज होती है जिसको स्वयं चखना पड़ता है, बताने से आप समझ नहीं सकते, स्वयं चखना पड़ता है। मैं कितना भी आपको बताऊँ, रसगुल्ला में मीठा होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें स्पंची होता है और सफ़ेद होता है, उसमें कलर भी डाल सकते हो और स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, इससे क्या होगा, उसको आप जब खाएंगे तभी पता पड़ेगा ना कि एक्चुअली रसगुल्ला क्या होता है। तो ये प्रत्यक्ष आवागमन धर्मम, ये खुद हम अनुभव कर सकते हैं इसका, भक्ति का। और आप कर चुके हो शायद कि आप भक्ति में जुड़े उसके पहले आप कैसे थे और भक्ति में जुड़ने के बाद आप कैसे हो, आप कैसा अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष आवागमन धर्म, और ये अनुभव बढ़ेगा आगे, कैसा होगा? यह ऐसा अनुभव आपको देगा जैसे आप आगे बढ़ोगे, सुसुखम, इतना सुख देगा, सुखम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम धर्मम, ये सर्वोत्तम धर्म है। और वो क्या करेगा? सुसुखम, आपको सुख देगा, बहुत सुख देगा। भक्ति में दुख होता ही नहीं है। परम करुणा पाहुं द्विजन इताई गौर चंद्र, सब अवतार, सारे अवतारों में सार शिरोमणि, इसका सार और शिरोमणि, सभी अवतारों का शिरोमणि, सभी अवतारों का अवतार ही केवल आनंद कंद, केवल आनंद। यहाँ पर कृष्ण भक्ति में आना है तो आपको पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है कि भक्ति में आने के बाद दुख नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा, सुखी सुख होगा, आपको एक्सेप्ट होता हो। अगर आपको आप चाहते हो कि आप केवल सुखी होना चाहते हो, आपके लाइफ में दुख हमेशा के लिए निकल जाए, तभी आप इसको हमने ज्वाइन हो जाइए भक्ति करने के लिए। केवल आनंद का सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये सुसुखम, ये केवल सुख देने वाला है। अर्थात अगर हम कृष्ण भावना रूप में जुड़ने के बाद भी दुख का अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम कृष्ण भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान का भक्त तो निरंतर सुख का अनुभव करता है। क्या बोलते हैं उसको? आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद का जो सागर है बुद्धिवर्धनम, उसका विकास होता है, उसका वृद्धि होता है। वृद्धि कैसे होता है? प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वाद कराता है कृष्ण भक्ति। हरिनाम, इसलिए केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। अच्छा, तो फिर वो जो हम सुख जो ये बाहुबली देखने से मिलता है या फिर ये सेम उसमें जाके आईपीएल में मिलता है, तो वो सारे सुख का वैल्यू नहीं है? वो जो सुख है ना, वो छल करने वाला सुख है, छल, आपको छल करता है वो, चीटिंग, चीटिंग हैप्पीनेस, वास्तविक नहीं है, इल्यूजन, मोह, मोह क्रिएट करता है। तो इसलिए असली सुख ये है कृष्ण भक्ति। शुरू समय का आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वास्तव में यही सुख सर्वश्रेष्ठ है। जो पहले कड़वा लगता है और बाद में मीठा लगता है उसको सत्वगुणी सुख बोलते हैं। और पहले जो सुख, पहले जो मीठा लगता है और बाद में कड़वा लगता है उसको रजोगुणी सुख बोलते हैं। जनरली ये रजोगुणी सुख होते हैं। 3 घंटा लगा बैठोगे एक जगह पर और बाद में हाँ ले, वेस्ट हो गया पूरा, पैसा भी गया, टाइम गया, एनर्जी गया, सब वेस्ट हो गया। माइक थोड़ा ऊपर, सब वेस्ट हो गया। तो भले 10,000 करोड़ बना देगा आपके हमारे ही पैसों से, लेकिन उसका तो फायदा होगा, हमारा नुकसान ही होगा। I'm not criticizing it, but I'm just giving example which is current right now. There is no harm to criticize also. So, pavitram, idam uttamam pratyakshavagamam dharmam susukham, आनंद देता है सुसुखम। एक महत्वपूर्ण कारण सुसुखम का ये है कि वो सरल है। कृष्ण भक्ति इतना सरल है इसलिए आपको आनंद आता है। करना क्या है उसमें? करना क्या है? श्रोतव्य, बस करना क्या है? सुनो, बस सुनने में कहां आपको, एक कोने में पड़े पड़े भी सुन सकता है, काम करते करते भी सुन सकता है। सुनने में तो कान का लॉक खोलना नहीं पड़ता, कि कान को आपको उठाकर ले जाना पड़ता है कहां माइक स्पीकर कहां लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। कान एक ऐसी इंद्रिय है जो हमेशा खुली पड़ी रहती है, रात को सोने के समय में भी खुली पड़ी रहती है। तो और पशु भी सुन सकता है, पशु आसन नहीं कर सकता। कुत्ते को देखा है आसन करते हुए? मुझे तो आज तक कुत्ते को एक ही आसन पता है ना, वो फोल्ड करके बैठ जाता है, बस वही आसन पता है, वही आसन है, वो जमीन पे हो या कार की हो, रूफ पे हो, गाड़ी के छत पे बैठ जाता है आजकल, लेकिन बैठता है एक ही आसन, उसको एक ही आसन आता है, उसको ज्यादा आसन नहीं आते।
लेकिन कुत्ता सुन सकता है,
श्रवण कर सकता है, तो कितना सरल है। देखो भक्ति कितना सरल है, छोटे बच्चे को बोलो प्राणायाम कर, 2 साल के बच्चे को नाक बंद कर, क्या नाक बंद कर, सांस खींच कर अंदर,
बच्चे को
तो नहीं करवाएगा, उसको बोलो बोलो हरे कृष्णा, और उसको नहीं आएगा फिर भी बोलेगा हरे कृष्णा,
नहीं आएगा फिर भी बोलेगा।
तो ये कितना सरल, देखो कृष्ण भक्ति कितना सरल है। इसलिए ये सबसे ज्यादा सुख देने वाला है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम का अर्थ होता है कि इसका नाश नहीं होता, एवरलास्टिंग है, क्योंकि आप बाकी जो चीज करते हैं वो नाश हो जाता है लेकिन ये नाश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन ये बढ़ता ही आता है, बढ़ता ही आता है। अगर आप पहली तिल भक्ति रसा में है कि तो कौन सी भक्ति बताई गई है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, 3 स्टेजेस है। तो जब साधन भक्ति करते हैं तो आप आगे बढ़ोगे तो भाव भक्ति, भाव भक्ति में से आगे बढ़ोगे तो प्रेम भक्ति, उसका भी अनंत है। वो प्रभुपाद जी का कहा चैंटिंग का, अच्छे चैंटिंग का रिजल्ट क्या है, मोर चैंटिंग। इफ यू आर चैंटिंग एंड यू आर सक्सेसफुल सो यू विल चैंट मोर, गुड चैंटिंग मींस मोर चैंटिंग, ज्यादा जब करोगे। तो इसलिए बहुत ही बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है राजविद्या के विषय में, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सके। सो राजविद्या प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसका कभी नाश नहीं होता, और फिर ये प्रश्न हो सकता है कि कौन लोग है ऐसे, ऐसे कौन लोग है कि जो लोग इसको पालन नहीं करते, इसको स्वीकार नहीं करते, कौन है ऐसे। तो क्या है 3 श्लोक का अर्थ है, क्या है
ये जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं,
श्रद्धा नहीं, अश्रद्धाना अश्रद्धा श्लोक पढ़िए,
अश्रद्धाना पुरुषा धर्म धर्मस्य परंतप अप्रया
तो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते कौन लोग, अश्रद्धाना पुरुषा, जो ये भक्ति में श्रद्धा नहीं रहता। श्रद्धा बहुत ही आवश्यक होती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का, सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है या विषय है वो श्रद्धा। वो जो भक्त मुझे कह रहे थे कि 9 स्कंद पढ़ने से ईर्ष्या से मुक्ति होती है, मैंने कहा कि इसमें आपको श्रद्धा भी होनी चाहिए कि ये 9 स्कंद पढ़ने से ईर्ष्या की मुक्ति होगी, ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अपराध से मुक्ति, अच्छा और क्या होना चाहिए, तीव्र इच्छा। अगर ये सब हो गया तब आप ईर्ष्या से मुक्ति हो सकते हैं। इसका तात्पर्य कि श्रद्धा किसी भी भक्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। कृष्ण में श्रद्धा रखना, आध्यात्मिक गुरु पे श्रद्धा रखना, श्री प्रभुपाद पे श्रद्धा रखना, वैदिक शास्त्र पर श्रद्धा रखना, भक्तों पर श्रद्धा रखो, भक्ति की विधि पर श्रद्धा रखो, जो कुछ भी शास्त्र में बताया गया है वो अपौरुष, क्या बोलते हैं उसको, अपौरुषेय है, अपौरुष है, मैनमेड नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये अपौरुष है। लास्ट के एक भक्त मुझे मिलने आए थे, तो कहे कि तुम्हें मुझे इस पर श्रद्धा नहीं होता है, मुझे लगता है कि सब सच होगा, ये लोग आप सब बताते रहते हो ऐसे सब, और दूसरा आप बहुत अच्छे लगते हो हमें, आप बहुत अच्छे एक ऐसे पर्सन, ऐसे ह्यूमन, यू आर वेरी नाइस पर्सन, मुझे बता रहे थे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी केयरिंग, लविंग, ऐसा सब बताया लिस्ट। लेकिन एक समस्या है बस, क्या बोले, आप भी भगवान पे श्रद्धा रखते हो, आप भी भगवान पे श्रद्धा रखते हो, आप भी शास्त्र पे श्रद्धा रखते हो, गुरु पे श्रद्धा रखते हो, और आप उसी को इतना दृढ़ विश्वास से मानते हो कि उसके अगेंस्ट में कुछ भी सुन नहीं सकते। वो बात तो है, ये मेरा एक वीक पॉइंट है। एक समस्या है मेरी, क्या करूं। तो श्रद्धा नहीं होने का परिणाम ये आता है कि अश्रद्धा पुरुष मृत्यु संसार वर्तमान, उसको मृत्यु संसार में फेंका जाता है, फेंक दिया जाता है, इतने सरल भक्ति को छोड़ करके। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या करना है आपको, कुछ करना तो है नहीं, पत्ता पुष्प फल जल कुछ भी मुझे भक्ति से अर्पण करो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आज चंदन स्वीकार किया, आज आज भगवान ने चंदन हमारे घर पे स्वीकार किया। अब हमें कहाँ आता है चंदन, ना हमारे घर में कोई आर्टिस्ट है ना कुछ नहीं, जो चंदन लगा दिया खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। एक बताया सुबह सुबह चंदन लगाने के बाद आगे पूछे कि चंदन भगवान के शरीर पर कैसे चिपकता है, इसके पीछे क्या साइंस है। मैंने उनको कहा इसका एकदम सिंपल साइंस है, क्योंकि चंदन भी भगवान से आलिंगन करना चाहता है, इसलिए क्या करे। वो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन कहने का तात्पर्य कि भगवान इतने कृपालु है कि आपकी थोड़ी सी छोटी सी भक्ति भावना जो है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। उनको कहाँ चंदन की कमी है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो आपकी भक्ति का भाव देखते हैं। कितना सरल है, बच्चा भी कर सकता है ये काम। तो क्या नाम है उसका, यू मस्ट बी नहीं, वो क्या नाम है विद्वान गौरांग का बेटा, मुकुंद, मुकुंद आई थिंक, मुकुंद नाम है उसका। वो बच्चे को मैंने देखा है, छोटा सा, छोटा सा मीन्स कितना, 2-3 साल 4 साल का था, 3 साल से देखा, 2-3 साल से, तब से वो भगवान की सेवा में लगा है। कौन, किसकी सेवा में, राधा माधव की सेवा में, मायापुर में राधा माधव नृसिंहदेव पंचत, और उसको पहले से शौक है, वो जगन्नाथ पुर के आसपास में घूमता रहेगा, जगन्नाथ जय बता का महाराज उनके आसपास में ही घूमता रहेगा, कहीं पर भी होगा तो वहीं पर घूमता, उसको और कहीं इंटरेस्ट नहीं आता, वहीं पर ही घूमता रहता। और उतना छोटा था चंदन यात्रा में घंटों घिसता था चंदन, हालांकि उससे जितना होता है लेकिन घंटों तक घिसता था। तो सुसुखम का तो इतना सरल और इतना आसान, प्रसन्न, सुख प्रयोग किए जाने वाले मार्ग में श्रद्धा नहीं होगी तो किसमें श्रद्धा होगी, किसमें श्रद्धा होगी, वही कचरे में जो संसार में दिखता है, हाँ है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उसमें श्रद्धा होगी। अश्रद्धाना मृत्यु संसार, उसको मृत्यु संसार में फेंका जाता है। हाँ, लेकिन भगवान में श्रद्धा रखोगे तो तुरंत ऑन द स्पॉट सीधा ले लेंगे अपने धाम। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो दावा नल है, संसार दावा नलीर है लोग, ये दावा नल है, ये दावा नल में से शांत करने के लिए भगवान अपने भक्त को भेजते। क्या नाम है उनका, वंदे गुरु श्री, वो आध्यात्मिक गुरु आते हैं, किस तरह आते हैं, दावा नल से निकालने के लिए। ये दावा नल प्रभात कहते हैं इसकी आग खुद खुद ना खुद लगती है, कोई लगाता नहीं। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कृष्ण बुक पढ़ के, ये दावा नल कैसे लगा, वो प्रश्न पूछा था गुरुजन प्रभु को, गुरुजन प्रभु बोले कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं भक्तिदान स्वामी, उनसे पूछ रहे प्रश्न, तो प्रभुपाद आए, सब बच्चों में से एक बच्चे ने हाथ उठाया, प्रभु स्वामी प्रश्न है।
गुरुकुल के बच्चे ने, क्या प्रश्न है?
छोटा सा बच्चा है, दाग ये कैसे लगा? कृष्ण भगवान आता है तो प्रभुपाद ने उसको फिलोसफी बताई, दाव में लगने आप लगता है, दाव में कोई लगाता नहीं है, अपने आप आग लगती है।
संसार है ही ऐसा जिसमें अपने आप आग लगती है, आप कितना भी उछल कूद कर लो आप खुशी सुखी नहीं हो सकते, कुछ जो करना है कर लो, आप ऊपर से पटक लो नीचे कुछ नहीं होगा आपका, है ना, आप सुखी नहीं हो सकते इस संसार में।
हाँ, लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं, वास्तव में वो जब दावा ने लगा था ना भांडीरवन ने, पता है भांडीरवन में दावा ने लगा था,
आप कोई गए भांडीरवन?
गए ना भांडीरवन, तो भांडीरवन में दावा ने लगा था, दावा ने लगा तो भगवान ने कहा सब भक्त, कहा ये सब चिल्लाने लगी मुझे, हमें रक्षा करो रक्षा करो, ग्वाल बाल मुझे कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण अभी गायों का क्या होगा, सब कृष्ण बड़े चिंतित हो गए। कृष्ण ने कहा कि ये गाय ये बच्चे सबका जिम्मेदारी मेरा है, और ये दाल का आग तो फैलता जाता है, उसका तो कोई अंत नहीं होता, तो फैल जाता है बहुत तेजी से। तो भगवान ने कहा कि अपने पे आंखें मत कर दो, भगवान ने कहा और यार हमारी आंखें खोली है फिर भी कुछ नहीं कर सकते, अगर आंखें बंद कर देते ठंडा हो जाएगा, ये अजीब बात कर दो, कुछ लॉजिकल बोलो। मधुमंगल तो ऐसे भी बहुत मजाक करता है भगवान से, तो भगवान ने सोचा कि भाई मन में सोचा कि मैं ये दावा मेरे को पान करने वाला हूँ, पी जाने वाला हूँ, और मैं तुम जो मेरे मित्र हो मुझ पर तुम पे एक रुपए का भी भरोसा नहीं है, मैं मधुमंगल इत्यादि जितने भी मित्र है उसको मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता,
एक वर्ष तो क्यों,
जब मैं छोटा था मेरे मुंह में जब मैंने थोड़ा सा मक्खन या मिट्टी क्या डाल दिया तो कंप्लेन जाके कर दिया यशोदा माता को कि इसने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई और पिटाई हो गई बिना कोई कारण,
डांट पड़ गई,
तो वहां पर कोई भरोसा नहीं है, क्या जाके तुम यशोदा माता कितने चिंतित हो गए, जाके तुम बोल दोगे ये तो दावदन पी गया था,
वो तो बेहोशी हो जाएगी
यशोदा माई, एक यशोदावनल पी गया आज, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें से कोई जाने कि मैंने दावनल पिया है, क्योंकि मैं यशोदा माता और नंद महाराज को ये बात का सूचना नहीं देना चाहता, इसे आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद, अभी आंखें बंद करने का अर्थ ही होता है कि आपको भगवान पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। मैं अभी आईडीसी पढ़ा रहा था ना, आईडीसी नहीं, एक जगह लेक्चर दे रहा था
कोई बड़े हॉल में
लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मैंने बोला सब भक्तों सब ट्रिप बैठे थे, सब नए थे फर्स्ट टाइमर्स थे, तो मैंने उनको कहा सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो एक्सरसाइज के बाद, तो कुछ लोग ऐसे आंखें खुली रहते हैं, मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करने वाला डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर, तो भगवान ने भी ऐसा ही कहा बच्चों को कि अगर तुम चाहते हो कि गायों का रक्षण हो जाए, तुम सबका रक्षण हो तो आंखें बंद करो। हाँ ठीक है,
तो कृष्ण
सबका उद्धार किया, लेकिन अगर वो इसमें किसी को श्रद्धा नहीं होती है ना, और आंखें खुली रख भी देता तो भगवान को तो पता पड़ जाता,
तो अश्रद्ध धारणा उसको श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति में,
वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, श्रद्धा रखना पड़ता है भगवान में, भगवान के भक्तों में, भक्ति की विधि में, संदेश में, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम में, गुरु में, श्री प्रभुपाद में श्रद्धा रखना पड़ता है, तभी हम सफल हो पाएंगे। चौथा श्लोक क्या है?
यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
अभी आने वाले जो 6-7 श्लोक है वो भगवान अचिंत्य भेदाभेद बताते हैं, ये अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ होता है एक साथ भगवान है भी और प्रकृति में और नहीं भी, तो क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर कि सब जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त का अर्थ होता है कि इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो कहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं,
अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है कि भौतिक रूप से दृश्यमान नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सूर्य अभी कहां पर है?
मर गया सूर्य। मर गया क्या?
कल जन्म होगा सूर्य?
नहीं,
सूर्य है अभी लेकिन आपके सामने नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। तो भगवान सब जगह है लेकिन हमारी चर्म चक्षु से हम उसको देख नहीं सकते। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं? दश श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये। भगवान को हमारी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से हम नहीं समझ सकते। भगवान है दिखाओ, जैसे वो सूर्य को देख सकता है, यहाँ से बैठे बैठे वो ट्रंप को देख सकता है, ऐसे ऐसे आदेश दे रहा है भगवान है तो दिखाओ। उसकी ब्लंट आईज दिवंग दूसरे कोने में क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, और दावा करता है कि भगवान को देखता है। भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, आप नहीं देख सकते भगवान को। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, तो कैसे देख सकते फिर? सेवन मुखे ही जीवादौ, जीवा से हरिनाम का उच्चारण करने से देख सकते हो आप भगवान, स्वयं एवं प्रकट होंगे, स्वयं अपने आप स्वयं एवं स्फुरति। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं स्पष्ट रूप से कि भगवान की जो माया शक्ति है वो उनसे प्रकट होती है। ये एंटायर यूनिवर्स इज परवर्टेड लिखा ना, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में?
भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती, कहा गया है कि
भगवान ट्रांसलेशन स्ट्रोक का ट्रांसलेशन,
यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है।
यस, मेरा ये संपूर्ण जगत, ये भगवान की शक्ति का ये आविर्भाव है। भगवान कितने महान है, आविर्भाव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस कमरे में एक मस्टर्ड सीड का जो दाना होता है कितना छोटा होता है, इस कमरे को पूरा भर दो मस्टर्ड सीड से, या पूरे अहमदाबाद को भर दो मस्टर्ड सीड से, कितने मस्टर्ड सीड आएंगे उसमें? इसकी कोई काउंटिंग हो सकती है? अनगिनत है ना, फ्राई के दाने अनगिनत। तो इतने सारे अनगिनत जितने भी अगर उसके सबकी तुलना की जाए ब्रह्मांड के साथ, एक एक ब्रह्मांड, एक मस्टर्ड सीड को अगर के ब्रह्मांड गिन ले तो वो सारी शक्ति सब बजा करके विष्णु के श्वास उच्छ्वास से प्रकट होती है, प्रकट होती है। और ये सारी शक्ति भगवान की 25% एनर्जी है बस, और 75% तो उनके अध्यात्मिक लोग हैं। आप सोचिए विष्णु भगवान कितने ऑपरेंट, और विष्णु कृष्ण का अंश के अंश के अंश के कई अंशों के बाद उनका आता है नाम विष्णु, तभी आप सोचो कृष्ण कितने महान हो गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। क्या हो गया उसको उठा के फेंक दो, छोटा है तो क्या हो गया, उठा के फेंक दो उसको। तो भगवान अपनी प्रकृति से एक ही साथ भिन्न है और अभिन्न भी है। जैसे एक राजा है तो राजा के बहुत सारे मंत्री सब बहुत सारा कुछ कार्य कर सकते हैं,
लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी है, चींटी से आपको क्या लेना देना, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो रोता है हंसता है, उसके कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने गए कि नहीं पढ़ने गए, तो आपसे इसे क्या लेना देना है ना। आप कभी बॉदर होते हैं इससे, क्यों बेचारे काम खंजूर कर क्या होगा, चला गया बाहर, अभी उसको वहाँ पर खाना कौन देगा, सोने को उसको रात को नींद कहाँ से आएगी, ऐसा कोई सोचता है क्या? हाँ इस हम इससे बॉदर है हम नहीं,
लेकिन भगवान जो है वो एक चींटी को भी उतना ही केयर करते हैं जितना हमारा आपका करते हैं। वो काम खजुरा जो है उसका भी उतना ही केयर करते हैं जितना वो हमारा आपका करते हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम उनको अपने घर पर बिठा के रखें, तो आपने बाहर रखा तो अच्छा किया, उसका स्थान बाहर ही होना चाहिए। तो भगवान ये कार्य करते हैं क्योंकि वो राजा है, उनकी शक्ति में सब जगह है फैली हुई अपनी शक्ति, सर्व बीइंग ऑल द लिविंग एंटिटीज आर इन मी बट आई एम नॉट विद देम, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं सबको संभालता हूँ, सबका वन टू वन रिलेशन में रहा है, लेकिन मैं फिर भी इन सबसे अलग हूँ,
सबसे अलग हूँ,
कोई आ सकते नहीं उनको। फिर नेक्स्ट,
तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ।
पहले बताया मस्थानी स्वरूप होता है, बताया नच मस्थानी
है ना, पहले एक बार बताया मस्थानी स्वरूप होता है, ऐसा कुछ है ना।
हाँ, और इसमें बताया नच
मस्थानी,
तो ये कंट्रोवर्सी बता रहे भगवान। पहले बताया कि सब मुझ में है, मैं अभी यहाँ पर बताते हैं कि जो भी मुझसे प्रकट हुआ वो सब मुझ में नहीं है, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मैं सारे जीवात्माओं का मेंटेनर तो हूँ, सब जगह भी हूँ, लेकिन मैं इसका अंश नहीं है। आपको कॉन्ट्रोवर्सी लगेगा सब, क्योंकि मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ, तो जो क्रिएट करने वाला होता है ना वो उसके कम करने उनका, जैसे आपके घर में आप यहाँ पर बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इस ये घर का अगर स्वामी भगवान है और उसको मैनेजर अगर महाशय प्रभु करते हैं, तो इस घर के हर कोने में कौन सी चीज कहाँ पर क्या कर रही है उनको पता होता है। इस भले वो जरूर नहीं कि वो किसी कमरे में जाकर बैठना पड़ेगा, अभी आपके टाटा बिरला अंबानी इनका इतना नेटवर्क इतना बड़ा होता है, तो क्या सब जगह उनको एक्सपांसन करना पड़ा, विराट रूप धारण करना पड़ता है? नहीं, वो तो अपने ऑफिस में बैठे, ऑफिस में तो छोड़ो, वो तो फार्म हाउस में भी होते हैं कई बार, एंजॉय वैकेशन कर रहे हैं, फिर भी सब काम अपने आप होता है कि नहीं, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति का प्रकाश करते हैं, बाकी सब अपने आप चलता है उनकी इच्छा मात्र से, सब कुछ उनके मतलब विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद बताते हैं। पश्चिमी योगमेश्वरम, योगमेश्वरम का अर्थ होता है कि उनकी दिव्य शक्ति से उनकी समग्र सृष्टि का संचरण अपने आप होता है, उनको उसका भार नहीं होता। जैसे वो एटलास का फोटो देखा आपने, एटलास साइकिल आते थे पहले, उसको ही देखा हो तो पता नहीं किसने देखा है, कैसा होता है फोटो में, कैसा होता है वो ग्लोब को उठा करके हाथ में ऐसे पसीना पसीना होकर के, अरे किस क्या दिमाग लगाया उसने ये सोच करके कि भगवान ऐसे पूरा हाथ में पूरा उठा करके ऐसे पसीना पसीना,
उसको बोलो इतना थका हुआ, उसको बोलो रासलीला करेगा, मक्खन चोरी करेगा ना, कोई 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 कारण नहीं देख सकता। जो कृष्ण ने किया ना उसमें से एक भी नहीं कर सकता, क्योंकि थका हुआ है पसीना वाला, क्या करेगा वो, ऐसा नहीं। कृष्ण कहा कि नहीं, वो जो छोटे में देखते हैं ना ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने दाम में मस्त रहता हूँ। जैसे फेमस एक एग्जाम्पल है कि कोई ना भगवान कौन है, भगवान कौन है, तो सब एक भाई एक वृंदावन में चला गया देखने के लिए, तो भगवान सभी देवताओं का मूर्ति वगैरह सब देखा, उसमें जाके कृष्ण का मूर्ति देखा, तो कृष्ण का मूर्ति देखा तो वो फ्लूट बजा रहे थे, बोले हाँ ये हो सकते हैं भगवान। बाकी तो बोले किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में गदा है, तो कुछ ना कुछ काम में लगे, लेकिन ये जो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में गर्लफ्रेंड भी है ना। ऑफकोर्स श्रीमती राधा रानी वो तो नॉन ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जो ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि नॉन ड्यूटी जाके देखा ऐसा। तो भगवान एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर है ना, और सृष्टि के परम भोक्ता है, इसलिए उनको ये सृष्टि संचालन उनका काम जो है वो तो उनका हाई कोर्ट का काम है, उनके सेक्रेटरी हम सब लोग करते हैं, वो अपना घर पे होते हैं, उनको सर ही दस दिस। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए ये अचिंत्य भेदाभेद हमें सीखना चाहिए। एक साथ भगवान है भी यहाँ पर, लेकिन एक साथ नहीं भी है। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान एग्जाम्पल देते हैं। भगवान सबका पालन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन सबसे अलग है। ये दो जो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रावर्सी है, तो वो कॉन्ट्रोवर्सी को ठीक करने के लिए 7वां श्लोक भगवान बताते हैं। वो दो 4 और 5 छठा श्लोक, 4 और 5 की जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसको ठीक करने के लिए, उसको समझाने के लिए भगवान स्वयं एक उदाहरण देते हैं 6 श्लोक में। कौन सा उदाहरण है?
जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
एग्जाम्पल भगवान होता है कि प्रबल वायु जो है सब जगह स्थिर है आकाश में, इस तरह से इसको समझना बड़ा आसान है। ये आकाश जो है उसको समझ लो कि एक बॉल है, आधा कटोरी ऐसा, उसको अपसाइड डाउन रख दो तो उसके अंदर हवा है कि नहीं है, एयर है ना आकाश। तो अगर वो आकाश है, वो आकाश इस तरह से हमारे सिर पे है, तो उसके अंदर अभी उसके अंदर एयर कौन से दिशा में जाता है इससे उस कटोरी को कोई लेना देना है? उसने दिशा बना दी, एक बाउंड्री डाल दी, इससे बाहर नहीं जा सकते है ना। फिर अंदर तुम कहाँ क्या करो, स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ कुछ भी करो, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार आपको जो करना करो, इससे भगवान विरक्त है, कोई लेना देना नहीं। हाँ लेकिन सब उनमें स्थित है, क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले वो है, उनकी बाउंड्री से बाहर कोई नहीं आ सकता। वो सबको जानते हैं लेकिन उनको कोई नहीं जानता, उनको सब पता होता है फिर भी वो सबसे विरक्त होते हैं। ये हमारे आचार्य कहते हैं कि ये अगर ऐसा है तो भगवान जब ये कह दिया कि पश्चिम योग महेश्वरम, इसका अर्थ होता है कि जो अचिंत्य ये भेदाभेद है, तो फिर अचिंत्य कैसे हो गया? ये तो आपने एग्जाम्पल देकर के चिंत्य कर दिया, कंसीवेबल हो गया या? कैसे हुआ ये चिंत्य?
हमारे बुद्धि से हमने
समझा, वो तो अचिंत्य का डेफिनेशन, लेकिन ये एग्जाम्पल जो दिया वो तो अचिंत्य फिर रहा नहीं ना, ये तो अभी तो आपको समझ आ गया, तो फिर अचिंत्य कैसे रहा?
स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल को मटेरियल से कैसे है?
जो कटोरी है और उसमें जो हवा होती है आकाश, ये दोनों ही निर्जीव है, लेकिन जीवात्मा और भगवान ये दोनों ही चेतन है। इसलिए कोई भी जीव का ये स्वाभाविक लक्षण है कि जो उनको सपोर्ट करता है उसमें वो आसक्त हो जाता है। बच्चा माँ को सपोर्ट करता है और माँ बच्चे को सपोर्ट करती है, इसलिए दोनों एक दूसरे में आसक्त होते हैं। पति पत्नी को सपोर्ट करती है और पति पत्नी को सपोर्ट करता है, इसलिए एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्त होना जीवात्माओं के लिए स्वाभाविक चीज है, आसक्त होना। लेकिन इसमें अनासक्त केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है पूर्ण रूप से सभी जीवात्माओं से, कि जो सभी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हो। सभी जीवात्माओं में नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जो सारे लिविंग बीइंग है उसमें जो सुप्रीम लिविंग बीइंग है, जो कंट्रोलर होते हैं वही विरक्त रह सकते हैं। जो नियम जो नियामक है वही विरक्त रह सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए होता है, क्योंकि भगवान सर कंट्रोलर होने के बाद भी सब कुछ अपने, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, फिर भी वो किसी के साथ एकदम सबसे विरक्त है, आपसे उनसे कोई लेना देना नहीं उनसे।
प्रभु जी, एक्चुअली गुणात्मक रीत से तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे में कोई क्वालिटीज है तो हम आसक्त हो जाते हैं भगवान।
हाँ, हम भगवान में आसक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे आसक्त नहीं होते। भगवान आसक्त, भगवान एक ही चीज से आसक्त होते हैं, आपकी भक्ति से। बस आपका जो प्रेम है ना, उसके उसको छोड़ के नहीं जा सकते, उसके सामने विवश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान एक ही चीज में आसक्त होते हैं, लेकिन हम दुनिया भर के हर एक चीज में आसक्त हो सकते हैं। ये हमारा और उनमें तो अंतर है, क्योंकि हम कण है और वो महान विभु है, तो ये हम दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल जो भगवान ने हमें बताया है बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि सारे संसार प्रकृति का मूल वो है, और यहां तक कहते हैं कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, not a blade of grass moves without the will of the supreme person of God. भगवान की इच्छा के बिना तो घास का तिनका भी नहीं हिलता। और हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अच्छा, तो प्रभुपाद तो कहते हैं कि भगवान एक घास का तिनका भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता, इच्छा के बिना। इसलिए कृष्ण से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब जानते हैं और सबके नियंता है वो। हम केवल उनकी अचिंत्य शक्ति को दो हाथ और एक मस्तक प्रणाम कर सकते हैं। That only we can. We don't know अचिंत्य। ये अचिंत्य का जो फीचर है ना, अभी आगे और भी ज्यादा अचिंत्य हो जाएगा। सातवां पढ़िए।
हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है।
तो प्रकट करते हैं और अप्रकट भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रकट करने वाला होता है ना, जो सर्जन करता है, स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उसमें आसक्त होता है। मैंने बनाया उसमें आसक्त होता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन भगवान सर्जन करने के बाद भी उससे अनासक्त है, उससे कोई आसक्त नहीं है। कोई राजा होता है तो क्या वो उसके राज्य में जो प्रिजन हाउस होता है उससे आसक्त होते हैं? हाँ, आसक्त होते हैं? नहीं।
प्रिज्म मास अगर चला जाए तो राजा को तो अच्छा ही है ना भाई, लोग सब अच्छे हो जाएंगे, अब सब लोग सुधर गए, पूरा पूरा राज्य अगर भगवान का भक्त बन गया तो फिर क्यों चाहिए भगवान को प्रिज्म मास, नहीं चाहिए।
तो सर्जन और विसर्जन भगवान कहते हैं कि ये बार बार सर्जन होता है और बार बार विसर्जन होता है, मेरी शक्ति से मुझे नहीं करना पड़ता ये काम, ये मुझे नहीं करना पड़ता, मेरा शक्ति कर देता है। ये नरेंद्र मोदी एक जगह पर बैठे दिल्ली में और बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इंडिया के एक एक कोना कोना कंट्रोल करते हैं, तो क्या वो खुद इधर आकर कंट्रोल करते हैं? उनकी शक्ति से होता है ना कंट्रोल, समझना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। तो भगवान तो सारी सृष्टि के रचयिता है, उनकी शक्ति मात्र से, परास्त शक्ति विविध ही श्रूयते, एक ही शक्ति है। अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का ये अभी एसी के रूप में यूज हो रहा है अभी ठंडा करने के लिए, लेकिन जब विंटर आ जाता है तो आप उसको गीजर में यूज करते हो गर्म पानी करने के लिए, है क्या? शक्ति तो एक ही है ना इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको दो अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, दो अलग अलग उपयोग ऐसे। तो इस तरह से भगवान की शक्ति तो एक ही है, यानी अनेक शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्ति जो है भगवान की जो शक्ति अंतरंग और बहिरंग, ये शक्ति इसका सर्जन विसर्जन करती है। भगवान कहते हैं कि होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, बार बार ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होता है मेरी इच्छा से, क्या बोलते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अच्छा परास्त शक्ति विविध ही श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया न तस्य कार्यम करणम च विद्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। स्वाभाविक ज्ञान का अर्थ होता है कुछ करना नहीं पड़ता, इच्छा मात्र से ऐसे। कल मैं आईडीसी के पेपर्स पढ़े थे, नए आईडीसी कल बीच वाले इतने सारे पेपर्स का बंच पढ़ा था आईडीसी पेपर, मैं सोचा कि क्या ऐसी योग शक्ति होती अपने पास कि सोचो इच्छा करो ऑटोमेटिक मार्किंग हो जाए सबके, कितना टाइम से हो जाएगा। आई वाज जस्ट मेकिंग क्रेजी आइडिया, ऑफकोर्स हम तो भगवान के ऐसे तब, लेकिन भगवान का स्मरण होता है इस तरह से क्या कि इच्छा से मात्र, तो सोचते इच्छा शक्ति से प्रकट होता है स्वाभाविक ज्ञान ऑटोमेटिकली स्वाभाविक। अगर आप समझो मदन गोपाल रात को सो गया, आधी रात को उसको उठाया 2 बजे, उठ हाँ ले लिए प्रसाद का, तो वो अंधेरा है सब जगह, तो वो प्रसाद आप कहाँ डालोगे, नाक में डालोगे, आँख में डालोगे, कहाँ डालोगे? आप पूरा नींद में हो, पूरा इतने थके हुए थे पूरे दिन, और आप तो कहाँ जाएगा आधी रात को उठा करके, कहाँ जाएगा भर रात को, कहाँ जाएगा? हो ही जाएगा पक्का, कान में नहीं जाएगा, क्यों? स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही हो गया उसको, आपको सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। इस तरह से भगवान ये पृथ्वी का सर्जन, सृष्टि का सर्जन करते हैं तो उस पर उनको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है स्वाभाविक ही अपनी शक्ति से, जस्ट मात्र जस्ट माय विल, यू नो माय विल अंडर माय विल इट इज एनिहिलेटेड एंड, ऐसा लिखा है मेरी विल से, मेरी इच्छा से प्रकट होता है और मेरी इच्छा से नाश हो जाता है, सर्जन भी होता है और विसर्जन भी होता है ऑटोमेटिकली। अभी इसमें भी महत्वपूर्ण क्या आया कि इतना सब ऑटोमेटिकली होता है, इस सृष्टि का सर्जन विसर्जन करते हैं और सारी सृष्टि के मालिक है ब्रह्मा इंद्र आदि सब उनका पूजा करते रहते हैं और वो भगवान यशोदा माता से भयभीत होकर भाग जाते हैं, ये अचिंत्य है, अचिंत्य के हिसाब से तत्व बता रहे थे, ये अचिंत्य है, तो वो ये अचिंत्य है, दौड़ते हैं वो कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं बच्चे, उनको पकवान उनको पहले पकड़ता है उनको, वो इस दुनिया में तो वो देखकर ब्रह्मा जी चकित हुए, वो किसी के प्लेट में से खा लिया, किसी के मुंह में से खा लिया, ये भगवान कैसे हो सकता है, ब्रह्मा भी है वो, इसलिए अचिंत्य है भगवान, ये अचिंत्य है भगवान का स्वरूप।
इस तरह से मक्खन चोरी करते हैं, किस तरह से उनको दंड मिलता है, उनको रस्से से बांध दिया जाता है, ये अचिंत्य है।
इसलिए कुंती देवी कहती है श्रीमद् भागवत में कि आपको कभी बांध देते हैं और आपके आंखों में से पानी पड़ता है, हम सोच रहे हैं कि जो भय को भी भयभीत करने वाले हैं वो भगवान की आंख में से भय के कारण आंसू आ रहे हैं। कुंती महारानी कहते हैं ऐसा, हे प्रभु घूर कपट मानुष, पता ही नहीं पड़ता आप क्या करते हो, घूर कपट मानुष अतिमर्त्यानि केशव, क्या है अतिमर्त्यानि, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जैसे मनुष्य, ऐसे लगता है कोई मनुष्य है, घूर कपट मानुष, ये कुंती देवी कहते हैं।
तो इस तरह से भगवान ये सृष्टि का सृजन विसर्जन सब करते हैं लेकिन फिर भी इससे अलग रहते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करते। फिर नौ में क्या है,
हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ।
ये सब भगवान की इच्छा से ये सब अरेंज होता है, प्रकट सृजन पालन और विसर्जन, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। फिर भी भगवान को इसका कर्म दोष नहीं लगता, हम कुछ सृजन करेंगे और विसर्जन करेंगे तो उसका दोष लगता है। सीधी सी बात है, जाओ किसी के घर पर जाकर शीशी का कर काम तोड़ दो, खिड़की का काम तोड़ दो, विसर्जन करो खिड़की का, तो क्या होगा, कर्मदोष लगेगा, सीधा आके बाहर आपको झगड़ा हो जाएगा। भगवान इतनी सृष्टि का सर्जन विसर्जन करते हैं, उनको कोई कर्मदोष नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उनको कर्मदोष। जैसे हाईकोर्ट के जज रोज किसी को बोलते उम्र क्या है, किसी को बोलते हैं फांसी, किसी को बोलते हैं इतना फाइन, तो इतना सब देते हैं, तो क्या वो सबके कर्म का उसका भुगतना पड़ेगा जज को, नहीं। इस तरह से भगवान सृष्टि का रचना करते हैं, उसकी विसर्जन भी करते हैं, लेकिन भगवान उससे व्यक्त रहते हैं, न्यूट्रल, उसको कोई लेना देना नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा विरक्त व्यक्ति एक ही है, कृष्ण, उनको मुझसे भी कोई लेना देना नहीं है, आपसे भी कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर भी क्योंकि हम उनके सेवा में जुड़े हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक ही साथ अचिंत भेदाभेद, ही लव्स यू एट द सेम टाइम इज डिटैच्ड, ऐश्वर्य है ना भगवान के, उसमें एक ऐश्वर्य क्या है, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण विरक्त है। गोपियों का त्याग कर सकते तो हमारी तो बात ही हो, कोई कमजोरी नहीं है किसी का भी त्याग, इसलिए भगवान को हमारी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन हमें भगवान की आवश्यकता है। सेम वे प्रभुपाद को और आपके आध्यात्मिक गुरु को आपकी आवश्यकता नहीं है, ये नहीं सोचना मैं हूँ तो गुरु महाराज का ही काम होता है, मैं और थोड़ी हुआ, आपको आपकी कोई आवश्यकता नहीं गुरु को, आपको गुरु की आवश्यकता है। सो अभी भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो किस तरह से न्यूट्रल है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पढ़िए।
हे कुंती,
भगवान सृष्टि का सृजन और विसर्जन क्यों करते हैं?
सृष्टि का सृजन और विसर्जन जैसे एक राजा किसी प्रेजेंट हाउस को बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि उनके सामने ऐसे अपराधी लोग आ जाते हैं कि जिनको प्रेजेंट हाउस में नहीं डालेंगे तो बाकी सब लोगों को परेशान कर देंगे, तो इसलिए उनको प्रेजेंट हाउस में डाला जाता है ताकि वो रिहैब सेंटर, जिस प्रेजेंट हाउस
एक रेयर सेंटर के रूप में काम करेगा जिसको अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा, और जब वो ठीक से सुधर जाएंगे लोग प्रिजन हाउस में, तब उनको वापस इस संसार में जैसे कैदी को मुक्त किया जाता है उस तरह से भगवान उसको अपने धाम वापस ले लेते हैं। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग भोगने का इच्छा करते हैं, जो भगवान का विस्मरण करते हैं, उनके अगेंस्ट में आते हैं, उन सभी लोगों को इस जगह पर रिहैब सेंटर में डाला जाता है ताकि प्रिजन हाउस के रूप में काम होता है। इसलिए उसका सर्जन विसर्जन भगवान खुद नहीं करते, अपनी शक्ति को बोलते करने के लिए कि ये लोग जो आते हैं, जो लोग मुझसे बिछड़े हुए हैं, उन लोग को भेजो इसमें, उनको ठीक करो, ठीक हो जाए, भक्ति में जुड़ जाए, फिर मेरे पास आओ, फिर दया आती है। बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, प्रिजन हाउस में सड़े रहेंगे, कष्ट भोगेंगे, नहीं नहीं चलो नहीं जाता, तो फिर अवतार लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रभुपाद को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, क्यों, कृपा आती है, दया आती है, इसलिए और कोई कारण नहीं। तो दिस इज द रीजन बना सृजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, उनको ऐसे शौक नहीं है, अपने आप योग हो जाता रहता है, ऑटोमेटिक काम, ऑटोमेशन होता है, पता है ऑटोमेशन बहुत फेमस हो रहा है आजकल, किसी नई नई फील्ड हो गई है। अगर आप ऑटोमेशन में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका स्कोप बढ़ने लगा, क्योंकि आज लोग आजकल सब लोग ऑटोमेशन चाहते हैं, ऑटोमेशन ऐसे ताली बजाओ, एसी ऑन, यू नो ऐसे ऑटोमेशन, सबको ऑटोमेशन चाहिए, अपने आप सब कुछ काम करने लगे। तो अगर एक छोटा सा बुद्धि छोटा सा ब्रेन वाला मनुष्य अगर वो ऑटोमेशन में इतनी सारी ऑटोमेशन कर सकता है, सब अपने आप काम करता हो, कुछ नहीं करना पड़ता उसको, तो क्या भगवान नहीं कर सकते ऑटोमेशन? तो ये भगवान का ऑटोमेशन है, प्रकृति अपने आप काम कर दिए, सेट करके रखा है, प्रोग्राम करके रखा है, अपने आप काम करते हैं, बताना नहीं पड़ता उसमें। लेकिन कोई एरर नहीं आती है, सर पे कंप्यूटर में एरर आती है ना, ब्रेक डाउन हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया था कल रात को, ऐसा मुझे किसी ने बताया, इसमें ब्रेक डाउन नहीं होता। तो यस, क्यों अभी ये ऐसा क्यों होता है, और टेंस लोग में
हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है।
मई अधि अक्षेणा, मई मेरे अधि फ्रॉम अबो मिस मेरे नीचे, अक्षेणा मेरी आंखों के नीचे, मेरी सुपरविजन के नीचे क्या होता है,
ये भौतिक प्रकृति में
क्या होता है, प्रोड्यूस
सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं।
हाँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्ष हो गया ना, अध्यक्ष
प्रकृति,
ये अध्यक्ष मंदिर के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिनके लीडरशिप के नीचे, जिनके आंखों के नीचे अध्यक्ष है, मया अध्यक्षेण मेरे मेरे कारण, मेरी मैं उसका नाम सुपरिंटेंडेंट हूँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचर, ये चर और अचर का सृष्टि का जो जन्म होता है और विसर्जन होता है वो अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड अगेन एंड अगेन, इस तरह से वो काम करता रहता है, अगेन एंड अगेन आता है जाता है, आता है जाता है, कितनी बार आता जाता है बाय प्रकृति बट अंडर माई सुपरविजन, अंडर माई सुपरिंटेंडेंट, मैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझसे संसार का कोई चीज स्वतंत्र है ही नहीं, तो फिर प्रकृति कैसे स्वतंत्र हो सकती है? तो इसलिए वो भी मेरे सर्जन का ही भाग है, ये मेरी शक्ति का ही भाग है। कृष्ण इज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज शक्ति, हाउ इट इज वर्किंग, वन ऑफ हिज एनर्जीज, जैसे कि अम्बरीश महाराज
नवदा भक्ति में इस तरह से जुड़े हुए थे कि उनको प्रैक्टिकली राज्य संभालने का कोई टाइम नहीं मिलता था। उनको पूरे विश्व के राजा थे, ऐसा नहीं कि भारत के ही राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। लेकिन वो इतने कुशल राजा थे कि वो अपने महल में अपनी जगह पर तो यही सर्वनाम कीर्तन करते रहते थे, भागवत सुनेंगे, हरिनाम करेंगे, अर्चन विधि करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसा सब करते रहते थे। वो अमरीश महाराज राजा थे तब भी ये सब करते रहते थे, पूरा राज्य बड़े आसानी से काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट। कैसे? इस तरह से मैं अध्यक्ष प्रकृति सूर्यदे राजा अपने आप काम करता था, उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना पड़ता था अम्बरीश महाराज को। तो इस तरह से जैसे प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज इट ग्लैंसेस ओवर द मटेरियल नेचर, क्योंकि ग्लैंस करते हैं प्रकृति पर।
यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निदेशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, ये प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के सक्षम फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग हो रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों के पृथक रहते थे।
एग्जाम्पल लिया फ्लावर का, फूल की खुशबू होती है, अभी फूल का खुशबू अपने आप फैलता है, अभी कौन उसको सुगंध लेता है, कौन नहीं लेता, बच्चे ने लिया, बूढ़े ने लिया, स्त्री ने लिया, इससे फूल को क्या लेना देना। फूल जहाँ पर है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सुगंध आसपास फैल जाती है। अभी फूल को खुद को नहीं पता होता कि उसकी सुगंध किसने ली है, उसकी खुशबू फैल गई सब जगह। एग्जाम्पल दिया गया कि भगवान की सृष्टि का सर्जन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति प्रकट कर सर्जन विसर्जन करती है, इसमें भगवान को भगवान से पृथक रहते हैं, भगवान उसको उससे दोष उसके संपर्क में नहीं आते, और भगवान बहुत चतुर है। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में और समझेगा आपको ग्रंथ में क्या प्राप्त होता है कि कहा है ना यहाँ पर बाई ग्लैंसिंग, क्योंकि भगवान दृष्टिपात करते हैं, ऐसा लिखा है ना यहाँ पर, दृष्टिपात करते हैं,
अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा
दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने का होता है कि एक कार्य तो उनको करना पड़ता है ना, ऐसे एक कार्य दृष्टिपात करने का कार्य वो तो करना पड़ता है ना ऐसे, तो भगवान वो भी नहीं करते। यहाँ पर ऊपर लिखे कि वो उनको कार्य करना पड़ता है, लेकिन वो भी उनकी शक्ति करती है, वो नहीं करते ये कार्य। भगवान रुद्र को देते हैं, शिव जी को, शिव जी को कहते हैं कि तुम दृष्टिपात करो प्रकृति के ऊपर, क्यों तुम्हारी पत्नी है, मेरी पत्नी थोड़ी है दुर्गा देवी, प्रकृति जो है वो तुम्हारी पत्नी है, तुम दृष्टिपात करो। ये रुद्र जो है वो भगवान का अंश है, हालांकि हमें पता है कि शिव जी का काम है विनाश करना, लेकिन अगर जो मेन रुद्र है जो सदाशिव है, वो सदाशिव भगवान का अंश होता है,
और वही अंश जो है वो प्रकृति पर दृष्टिपात करवाता है, वो भगवान के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इस सृष्टि का सर्जन विसर्जन भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं। अभी आगे दूसरा सेक्शन शुरू होने वाला है कि क्यों फिर भगवान को लोग इतना महान है फिर उनको स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते क्यों, विशेष करके मायावादी लोग ऐसा क्यों, तो चर्चा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आपसे। कुछ 34 श्लोक है इस चैप्टर में, जिसमें हमने 10 लिए हैं और अभी 24 बाकी हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले 2 सेशंस में 24 श्लोक हम कंप्लीट करें। शॉप हियर।